ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जैसा कि आप सब पता है, इसमें वर्ल्ड हरनाम डे मनाया जा रहा है, तो हरनाम का क्या महत्व है उसके बारे में इस कौन में सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आज हम भी एक श्लोक लिए हैं जो स्कंद 6:2 श्लोक संख्या 49, जिसका नाम है विष्णु के द्वारा अजामिल का उद्धार। हरनाम का महत्व के बारे में बहुत सुंदर इस श्लोक में बताया गया है। मृयमाणो हरिनाम गणपुत्रोपचारितम् अजाम्योऽप्यगाथाम् किम् श्रद्धया गुणान् म्रियमाणः। मृत्यु के समय हरह नाम, हरि का पवित्र नाम गुणान् उच्चारण करते हुए पुत्र उपचारितम् अपने पुत्र की ओर इशारा करते अजामिला अजामिल अपि तक अगात गया धाम आध्यात्मिक जगत किम उत क्या कहा जा सकता है। श्रद्धया श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक गुणन उच्चारण करते हैं। अनुवाद पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज की। तो मृत्यु के अजामिल ने मृत्यु के समय कष्ट भोगते हुए भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया, और यद्यप उसका यह उच्चारण उसके पुत्र की ओर लक्षित था, फिर भी वह भगवत धाम वापस गया। इसलिए यदि कोई श्रद्धा पूर्वक तथा निरपराध भाव से भगवान नाम का उच्चारण करता है तो भगवान के पास लौटेगा, इसमें संदेह नहीं है। तात्पर्य, मृत्यु के समय मनुष्य निश्चित रूप से मोहग्रस्त हो जाता है, क्योंकि उसके शारीरिक कार्य अव्यवस्थित हो जाते हैं। उस समय भले ही किसी ने अपने जीवन पर भर भगवान नाम का कीर्तन करने का अभ्यास किया हो, किंतु वह स्पष्ट रूप से हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण न कर पाए, फिर भी ऐसे व्यक्ति को पवित्र नाम के कीर्तन का सारा लाभ मिलता है। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, क्यों न हम जोर जोर से तथा स्पष्ट रूप से भगवान नाम का कीर्तन करें। यदि कोई ऐसा करता है, यह संभव है कि मृत्यु के समय भी वह प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक भगवान नाम का ठीक से कीर्तन कर सके। निष्कर्ष के रूप में जो व्यक्ति निरंतर भगवान का कीर्तन करता है उसकी भगवत धाम वापसी बिना किसी संदेह के सुनिश्चित है। स्पेशल टिप्पणी यहाँ पर दी गई ही सीखे, इसको भी ध्यान सुने। इस अध्याय के श्लोक 9-10 की श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा की गई टीका एक वार्तालाप के रूप में है। किस तरह कोई भगवान नाम का कीर्तन करने माँ से सारे पाप फलों से मुक्त हो सकता है, कोई कह सकता है, ध्यान सुनेगा, कि स्वीकार किया जा सकता है कि भगवान नाम के कीर्तन से मनुष्य पापी जीवन के सारे फलों से मुक्त हो जा सकता है, किंतु यदि कोई पूर्ण चेतना में रहते हुए पाप कर्म करता है, वह भी कई एक बार नहीं अपित अनेक बार, तो वह अपने को ऐसे पापों के फलों से मुक्त करने में अक्षम रहता है, चाहे उनके लिए उसने 12 या अधिक वर्षों तक प्रायश्चित क्यों न किया। तो फिर यह कैसे संभव है कि केवल एक बार भगवान का नाम लेने से कोई तुरंत ही ऐसे पापों के फल से मुक्त हो जाता है। अब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका उत्तर देते हैं कि इस अध्याय के श्लोक 9 तथा 10 का उदाहरण देते हुए कहते हैं, कि भगवान विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन सोने या अन्य कीमती वस्तु की चोरी करने वाले शराबी, मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले ब्राह्मण के हत्यारे या अपने गुरु या अन्य गुरुजनों की पत्नी के साथ संभोग करने वाले के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। स्त्रियों, राजा या अपने पिता की हत्या करने वाले, गौओं का वध करने वाले तथा अन्य सभी पापों लोगों के लिए भी यह प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। भगवान विष्णु के नाम का मात्र कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति परम भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। अतः भगवान यह सोचते हैं क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरे पवित्र नाम का कीर्तन किया है, अतः उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये भगवान सा सोचते हैं। मनुष्य पापी जीवन के लिए प्रायश्चित कर सकता है और पवित्र नाम के कीर्तन से उसके सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। यद्यपि यह प्रायश्चित नहीं कहलाता, सामान्य प्रायश्चित पापी व्यक्ति को अस्थायी रूप से रक्षा प्रदान कर सकता है, किंतु उसके हृदय में पाप कर्म करने की जो जड़ें गड़े जमी हुई रहती हैं उनसे यह हृदय को स्वच्छ नहीं बना सकता। अतः प्रायश्चित भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन जितना शक्तिशाली नहीं होता। शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान केवल एक बार पवित्र नाम का उच्चारण करता है और भगवान के चरणों कमल में पूर्ण शरण ले लेता है तो भगवान उसे अपना अभिभावी मान लेते हैं और उसे शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्मुख रहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीधर स्वामी ने की है। इसे जब अजामिल यमराज के दूतों द्वारा ले जाने के महान खतरे में था तो भगवान ने तुरंत ही उसकी रक्षा करने के अपने निजी दूतों को भेजा, क्योंकि अजामिल सारे पाप भावों से मुक्त कर दिया गया था। इसलिए विष्णुदूत उसके पद से बोले। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था और चूंकि वह अपने पुत्र को अत्यधिक चाहता था अतः वह उसे बारंबार पुकारता था। यद्यपि वह अपने पुत्र को बुलाता था किंतु यह नाम स्वयं पर्याप्त शक्तिशाली था, क्योंकि नारायण नाम परम भगवान नारायण से भिन्न नहीं है। अजामिल ने जब अपने पुत्र का नाम नारायण रखा तभी उसके पापी जीवन के सारे फल निरस्त हो गए थे। चूंकि वह अपने पुत्र को पुकारता रहता था जिससे वह नारायण के नामों का हजारों बार उच्चारण करता था, अतः अनजाने में वह कृष्ण महानामृत में प्रगति कर रहा था। कोई यह तर्क कर सकता है क्योंकि वह निरंतर नारायण नाम का उच्चारण कर रहा था तो फिर उसके लिए एक वेश्या की संगति करना तथा शराब की सोचना कैसे संभव हुआ। अच्छा प्रश्न। अपने पाप कर्मों के द्वारा वह बारंबार अपने ऊपर कष्ट लाता जा रहा था, इसलिए यह कहा जा सकता है उससे मुक्त होने का कारण था उसके द्वारा नारायण का उच्चारण, किंतु तब उसका उच्चारण करना नाम अपराध हुआ होता। नामो बलात् यस्य हि पाप बुद्धि। जो व्यक्ति पाप कर्म करता रहता है और भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके अपने पापों का निरस्त करता रहता है करना चाहता है वह नाम अपराधी है। इसके प्रत्युत्तर में यह कहा जा सकता है कजामिल द्वारा नाम लिया जाना निरपराध था, क्योंकि वह अपने पापों के निवारार्थ नारायण नाम का उच्चारण नहीं करता था। वह यह नहीं जानता था कि वह पाप कर्मों में लिप्त है, नहीं वह यह जानता था कि नारायण का नाम लेने से वह पापों को नष्ट कर रहा है। इस तरह उसे नाम अपराध नहीं किया और अपने पुत्र को बुलाते समय उसके द्वारा नारायण नाम का बारम्बार लिया जाना शुद्ध कीर्तन ही कहा जा सकता है। इस शुद्ध उच्चारण के कारण अजामिल भक्ति के फलों को अनजाने संचित करता रहा। दरअसल उसके जीवन के सारे पाप फलों को निरस्त करने के लिए उसके द्वारा पवित्र नाम का पहला उच्चारण ही पर्याप्त होता। यहाँ पर एक नीति शास्त्र का उदाहरण उद्धृत किया जा सकता है कि अंजीर के वृक्ष में तुरंत फल नहीं लगते किंतु समय आने पर फल प्राप्त होते हैं। इसी तरह अजामिल की भक्ति रंच रंच करके बढ़ी, अतः अत्यंत पाप कर्म करने पर भी वे फल उसे प्रभावित नहीं कर सके। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भगवान के नाम का एक बार भी उच्चारण करता है तो उसे भूत, वर्तमान या भावी पाप में जीवन के फल प्रभावित नहीं करते। एक अनुदान दिया जा सकता है, यदि कोई सब के पिष्टंत निकाल ले तो भविष्य में यह सांप जिसे शिकार बनाएगा उसे विष नहीं व्यापेगा, भले ही वह सब उसे बारंबार क्यों न काटे। इसी तरह यदि कोई भक्त निरपराध होकर एक बार भी पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो उससे उसकी शाश्वत रक्षा होती है, उसे उच्चारण करने के फल के यथार्थ में परिपक्व होने की केवल प्रतीक्षा करनी होती है। समझ में आया? बहुत अच्छी तरह विश्वनाथ चक्रवर्ती और प्रभुपाद जी ने समझाया है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशक्ति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ते है हरि नाम का प्रभाव और बहुत ही सुंदर ये प्रसंग सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परिचित महाराज को एक कथा अजामली की कथा सुना करके हरिनाम के महत्व को क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये हरिनाम कितना प्रभावशाली है। लेकिन दुर्भाग्य से इस कलयुग में संसार के लोग जो है इस कथा का अनुकरण नहीं कर रहे हैं। वास्तव में कथा तो सब सुनते हैं, अजामली कथा अक्सर सुनाई जाती है, लेकिन इसका उद्देश्य ही होता है कि लोग जो हैं भगवान के नाम के प्रति वो क्या हो, आकृष्ट। इस कथा सुनाने का यही तत्व है सुखदेव गोस्वामी महाराज का कि भगवान का नाम कितना प्रभावशाली है कि एक ब्राह्मण होकर के, क्योंकि जो अजामिल था वो ब्राह्मण था लेकिन वो वैश्या के साथ शादी करके 10 बच्चे पैदा किए, कितने 10 पुत्र उत्पन्न किए, और इतना बड़ा परिवार होने के बाद पालन पोषण तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए धन के लिए क्या किया, चोरी जुआरी हर गलत काम करता था। तो इस तरह से शादी करने के बाद और जघन्य अपराधों में क्या हो गया, वो लिप्त हो गया। लेकिन उसने एक काम अच्छा किया था, क्या किया था कि जो अंतिम बेटा था उसका नाम नारायण रखा था। और ये स्वाभाविक है कि जो छोटा संतान होता है चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री है तो माता पिता के प्रति छोटे वाले पर विशेष लगाव होता है, है? उसी प्रकार से ये अजामिल जो था कि 9 पुत्रों को उतना नहीं ध्यान देता था लेकिन जो छोटा वाला पुत्र था नारायण उस पर उसका भूल लगाव था। अब बार बार नारायण पुकारता था, नारायण बेटा इधर आओ, नारायण बेटा पानी लाओ, नारायण बेटा खाना खाओ, माने हर बार नारायण नारायण बोलता था। वही प्रभुपाद समझाते कि हजारों बार ये नारायण नाम लिया था, इससे ये नारायण नाम लेने से अनजान में लेने से वो उसका जो है यमराज के खाते में उसका नाम रजिस्टर्ड होता था कि नाम ले रहा है नाम ले रहा है ना, ये उसके पुण्य के खाते में एक नोट होता चला जाता था लेकिन उसको एक पता नहीं था। वो निपराध हो क्योंकि वो पाप इसे नहीं करता था कि पाप कर रहे हैं इसे नारायण का नाम दे रहे हैं, तो जो पाप भी करे और उस पाप को प्रायश्चित करने के नारायण का नाम ले अरे हरे कृष्ण का जप करे तो नामापराधी हो गया, लेकिन वो नामापराधी नहीं था। यही श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती श्री गोस्वामी ने समझाया कि वो सब अनजान कर रहा था लेकिन भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है कि यदि आप अनजान में भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तो वो कितना प्रभावशाली होता, वो भी आपको पाप कर्मों से क्या करता है, बचा देता है। इसके लिए बहुत सुंदर एक प्रसंग है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है ये जो भणभूजा होती है ना, भणभूजा जो लाई चना भूजते हैं उसको क्या बोलते हैं, भणभूजा होते जो लाइट चना पर भूजता है ना। आजकल तो ये भूजने वाले नहीं दिखाई देते कि भूंजा भूजा जो है आपको मिल जाता है चना जो भी होता लाइट चना ये सब। लेकिन पहले गांव में भणभूजा होते थे, एक जाति होती थी, उनका काम होता अनाज को भूनना, राइट। लाई लावा चना भूजना के लिए जाते थे। एक व्यक्ति था, अब आप तो शहरी हो गए इसलिए लोग कम समझ जाता है, हम लोग तो गांव के तो समझते हैं इस चीज़ को कि अगर गांव में हर जाति के लोग रहते हैं तो भणभूजा होता था। हम लोग अनाज लेके जाते थे, भुंजवाते थे और फिर लेकर के आते थे, ऐसा होता था। तो एक भणभूजा था, वो क्या किया, ये जो लाई होता ना लाई है ना, जो चावल को भुंजा करके लाई लेके आते, जैसे मुरमुरा आप बनाते भेलपुरी जिसका बनाते हैं, राइट। तो वो मुरमुरे लेकर के आ रहा था, तो बहुत बड़ा वजन होता है, बहुत हल्का होता है ना, तो एक किलो इतना चढ़ता है। तो वो पूजा करके और उसकी गठरी बांध करके लेकर के आ रहा था, लेकिन बीच में वो फंस गया। तो एक होता है, एक होता है आंधी, एक होता है चक्रवात। चक्रवात उसे कहते हैं जिसमें तृणावर्त वाला स्टाइल था, जैसे तृणावर्त क्या क्या था, चक्रवात में कृष्ण को लेकर उठा ले गया था, तो उससे चक्रवात होते हैं। तो उसमें उसके में बाउंडर, देसी भाषा में बाउंडर कहते हैं, वो बाउंडर में फंस गया। तो बाउंडर क्या होता है कि जमीन की चीजें ऊपर उठा ले जाता है। आप सब क्या होता, कई साल पहले दिल्ली में बाउंडर आया था कुछ खास जगह पे, उसने बड़े बड़े स्कूटर गाड़ियां उठाकर फेंक दिया था, याद है, बहुत ये आया था दिल्ली में भी आया था। तो उसे कहते बाउंडर, उसी बाउंडर में वो बेचारा आदमी सीधा साधा वो फंस गया। हुआ क्या कि जो गठरी थी वो उड़ गई थी, उसने बहुत छलांग लगाया कि हम इस गठरी को पकड़े तो गठरी नहीं मिलती, और पूरा जो लाई थी उसका जो मुरमुरे था वो सब बिखर के उड़ के पता नहीं कहाँ चला गया, है ना। जानते क्या बोलता है कि कृष्णा अर्पणम, क्या बोला, कृष्णा अर्पणम, कि एक गठरी की जो लाई है मुरमुरे है, हे कृष्ण मैंने आपको दे दिया। जब उसके हाथ नहीं लगा तब ऐसा बोला कृष्णार्पण, कि मैंने कृष्ण आपको अर्पित कर दिया, और अपना खाली हाथ लेके वापस आ गया। एक दिन क्या हुआ, उसकी जब पत्नी थी अपने मायके चली गई थी, तो पत्नी से बड़ा प्यार करता था, और दो तीन दिन तो रहा बिना पत्नी के, चौथे दिन उससे नहीं रहा गया, नहीं। तो अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल जाने लगा। उसका जो ससुराल था वो नदी के उस पार था, तो नदी के इस पार उसका घर था और नदी के उस पार उसके ससुराल थे, तो नाव से जाना पड़ता था। तो वो जो है अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए गुलाब का दो फूल लेकर के जा रहा था। जब नाव में बैठा और नाविक उसको चलाने लगा, तो वो जो है आराम से जा रहा था, जैसे ही नदी के बीच में नाव पहुंची उसको प्यास लगी, उसने क्या कि पानी पीने लगा, तो उसका जो फूल था गुलाब का वो गिर गया। जब फूल गिर गया तो बह गया, तो बहुत प्रयास किया उसको पाने के लिए, लेकिन उसको फूल क्या हुआ, नहीं मिला। तो कहता है कृष्णार्पण, हे कृष्ण मैंने आपको अर्पित कर दिया। लेके जा रहा था पत्नी के लिए, जल में गिर गया, जल नहीं मिला तो भगवान को समर्पित कर दिया। क्या सोच है उसकी, गया पत्नी के लिए। उसके बाद जब वो मर गया तब यमराज के दूत आए, जैसे अजामिल के पास आए थे। यमराज के दूत उसको जो है लेकर के कहाँ गए, यमराज के पास। जब यमराज के पास हाजिर हुआ, यमराज ने कहा चित्रकेतु इसका बही खाता दिखाओ, बताओ कितना पाप किया है कितना पुण्य किया है। तो चित्रगुप्त ने उसका बही खाता निकाला, उन्होंने कहा कि हे यमराज जी, इसने जिंदगी भर पाप किया है, लेकिन दो बार इसने अनजान में कृष्ण का नाम लिया है, इसने दो बार बोला है कृष्णार्पणम कृष्णार्पणम, तो दो बार इसने जो है कृष्ण का नाम लिया है, तो इसको जो है दो पल के लिए, चूंकि दो बार बोला था तो दो पल के लिए इसको स्वर्ग जाना ही पड़ेगा, अब बाकी हमेशा कहां रहेगा, नरक में रहेगा। ये बता दिया चित्रगुप्त ने। तो इमराज ने कहा ठीक है, अब इमराज उससे पूछते हैं कि देखो भाई तुमने जिंदगी भर पाप किया है, इससे तुम्हें हमेशा कहाँ रहना पड़ेगा, नरक में रहना पड़ेगा, लेकिन तुमने दो बार कृष्ण का नाम लिया है अनजान में, तो उसका यह फल है कि तुम्हें स्वर्ग लोग हमको ले जाने ही पड़ेगा, ले जाने ही पड़ेगा दो पल के लिए, लेकिन ले जाना पड़ेगा। अब तुम बताओ कि पहले स्वर्ग में जाओगे तब नरक में आओगे, या पहले नरक में रह करके फिर स्वर्ग जाओगे, अब तुम्हारे पर है। तो वो आदमी बड़ा बुद्धिमान था, कहे कि भाई देखिए सर, अगर हमें जिंदगी भर नरक में रहना है तो एक झलक हमें स्वर्ग का क्या करो दिखा दीजिए, हम स्वर्ग देख लेंगे, उसके बाद नरक में आकर के रहेंगे। तो यमराज को अच्छा लगा, कहे ठीक है। अब यमराज श्रोता है, उसको लेकर कहाँ गए, इंद्र जी के पास, इंद्रलोक स्वर्गलोक। तो वहाँ इंद्र का तरवार लगा हुआ था, अप्सराएं डांस कर रहे थे, पूरा भव्य जगह था। तो हुआ क्या कि जब यमराज जी उसको लेके जा रहे थे तो उनका जो रास्ता था ना राजभवन में जाने का, इंद्रभवन जाने का, वो नंदन वंश से होता हुआ जाता है। एक जितने बड़े राजा महाराजा होते हैं अपने पैलेस के साथ गार्डन जरूर बनाते हैं, है ना, जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं तो उनके लिए मुगल गार्डन बना हुआ है, सब गार्डन, क्योंकि वो आराम करेंगे और सुबह से टहलेंगे, है ना, सिर्फ बगीचा बनवाते हैं। तो वहाँ पर स्वर्ग में भी यही व्यवस्था है ना, कि सबके लिए नंदन वन जहाँ पारिजात पुष्प हुआ करता है, ऐसे पुष्प जो इस पृथ्वी पर नहीं पाए जाते, ऐसे पुष्प वही जो सूखते नहीं, उसकी माला बना दो अगर पारिजात पुष्प का तो वो माला सूखता नहीं है, ये तो सूख जाएगा बेचारा, शाम होते 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 सूख जाएगा, है नहीं, यहाँ के फूलों की स्थिति है, है नहीं? लेकिन वहाँ के जो पुष्प है वो कभी सूखते नहीं है, हमेशा सदैव महकते रहते हैं। तो उस रास्ते से उसको लेके गए तो उसको बहुत अच्छा दृश्य लगा स्वर्ग। वहाँ जा करके इंद्र ने बड़ा स्वागत किया यमराज जी का, है ना, और देखा कि उसके साथ में कोई व्यक्ति भी आया हुआ है, फिर उसको भी बुलाया, है ना, कहे भाई, कह कि यमराज ने बताया कि भाई दो पल के लिए इसको यहाँ पे लाया गया है। तो इंद्र ने कहा कि हमारे यहाँ जो कुछ भी आता है उसकी हर इच्छाएं क्या की जाती हैं, पूरी की जाती हैं, तो तुम्हारी जो भी इच्छा हो इसमें मांग लो, तुम जो भी इच्छा करोगे यहाँ पर तुम्हें प्रदान किया जाएगा। बहुत सोच समझ करके कुछ देर के बाद बोला कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे दो तलवार दे दीजिए। तो इंद्र जो है यमराज का मुंह देखने लगे, यमराज उनका मुंह देखे कि क्या मांग रहा है। अरे यहाँ पे इतनी सुंदर अप्सराएं होती हैं, इतना सुंदर, इतना भव्य, हर आनंद है, खाने पे हर चीज की सारी व्यवस्था है, ये आदमी कैसा है कि तलवार मांग रहा है, उनके सुन नहीं आए। लेकिन अब इच्छा तो इच्छा है, तो तुरंत आदेश दिया इंद्र ने, अब दो चमचमाती नई तलवार चांदी की उसको पकड़ा दीजिए। अब वो तलवार ले करके सीधा जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते की ओर उस बगीचा में जो चला गया नंदन वन में, जहाँ पारिजात पुष्प खिले थे, और वहां जा करके फूलों के बीच में खड़ा हो गया और दोनों तलवार से ऐसे बोलता है, कृष्णार्पणम कृष्णार्पणम, तो सारे फूलों को काटते हुए और कृष्णा को अर्पित करने लगा। आप सुने कृष्णार्पणम कृष्णार्पणम, तो सारे फूल जो है वो भगवान को अर्पित करने लगा। उसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि जब दो पुष्प अर्पित करने से भगवान हमें स्वर्ग तक पहुंचा दिए, है ना, तो इतने फूल अगर हम अर्पित कर देंगे वो भी स्वर्ग के पुष्प पारिजात पुष्प, तो हम कहाँ तक जाएंगे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए उसने जो है एक कृष्णार्पणम कृष्णा, इतने में इंद्र और यमराज दोनों दौड़ करके उसके पास गए कि बस 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 तुमने तो बहुत नाम ले लिया, अब पारिजात पुष्प के साथ अब तुम्हें तो स्वर्ग में भी रहने की जगह नहीं मिलेगी, इससे भी ऊपर तुम कहाँ चले गए जाओगे, क्योंकि कृष्ण का नाम ले लिया है, इतना नाम ले लिया है। ते है हरे कृष्ण महामंत्र का क्या है प्रभाव है। प्रभुपाद जी ने जानते हैं, जितने बड़े बड़े लोग आप देख रहे हैं, इस कान से जुड़ रहे हैं, हमारे जो सन्यासी जीवी सिंह महाराज लोग आप दे रहे हैं, ये सब क्या थे, हिप्पी थे, क्या थे, हिप्पीज थे, इनको भगवान से कोई लेना देना नहीं था, एलएसडी लेकर के नशे मस्त रहते थे वहाँ, है टॉम किसिंग पार्क में, इनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब प्रभु पहुंच गए तो क्या चमत्कार किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितने पतित का उद्धार कैसे होता, ऐसे करता है ना, इस जो नशा करता है अवैध संबंध करता है वो क्या पत, उसी पतित करते, पतित का मतलब क्या है, गिरा हुआ व्यक्ति है ना, जो कि शास्त्र के खिलाफ काम करता है उसे पतित करते हैं, पतित करते। सब पतित लोग जो है टॉम किसिंग पार्क में घूम रहे थे है ना, ऐसी लड़कियां वो लोग बदल रहे थे, हर घंटे दो घंटे बाद नई लड़की है ना। तो प्रभुपाद बड़ा हैरान थे, लेकिन प्रभुपाद ने इसी हरे कृष्ण महामंत्र के बल पर उनको क्या किया, भक्त बना दिया, पतितों क्या कर दिया, उद्धार कर दिया। तो एक शुद्ध भक्त किस तरह से पतित को पवित्र कर देता है हरिनाम की बात। तो प्रभुपाद जी ने हरिनाम की शक्ति से तीन शक्तियों का प्रभुपाद जी ने उपयोग किया। पहला किसका उपयोग किया, हरिनाम की शक्ति, हरिनाम के द्वारा उनके हृदय को शुद्ध किया, किसके द्वारा, हरिनाम के द्वारा, कि प्रभुपाद मानो कि हरिनाम के द्वारा ही हृदय को शुद्ध किया जाता है। कि भगवान चित्र महाप्रभु ने इस सिद्धांत बताया कि चेतो दर्पण मार्जन, चित्त का चित्र रूपी दर्पण का मार्जन किससे होगा, हरिनाम से होगा। तो हरिनाम से प्रभुपाद ने क्या किया, उनके हृदय की सफाई की। और उसके बाद प्रभुपाद ने क्या किया, प्रवचन गीता के सिद्धांत के द्वारा, है ना, क्योंकि वाणी के रूप में भी कौन है, कृष्ण ही है, हरिनाम के रूप में भी कृष्ण है, वाणी के रूप में भी कृष्ण है, अब प्रसाद के रूप में कृष्ण ही है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा नाकेबंदी कर लिया इन पतितों को, चारों तो नाके, हरिनाम भी कृष्ण, प्रसाद बना करके भोग लगा कर जब प्रसाद खिलाया तो प्रसाद बहुत असर किया है ना। तो हरिनाम के द्वारा, प्रसाद के द्वारा और वाणी के द्वारा, अर्थात गीता का जो संदेश है, भागवत का जो ग्रंथ के द्वारा, प्रभुपाद शास्त्र ने इन तीनों के नाक से क्या कर, प्रभुपाद ने सबका उद्धार कर दिया। तो कितना प्रभावशाली है, ये तीनों कृष्ण ही है। इसलिए प्रभुपाद जी प्रसाद हाल में लिखवाते थे उस समय, अब पता नहीं लिखा जाता, कि हम लोग बंबई में जब थे पीले कपड़े में तो वहां लिखा रहता है कि कृष्ण और कृष्ण प्रसाद में अंतर नहीं है, कृपया प्रसाद का सम्मान करें, ऐसा लिखा जाता था है ना। अब पता नहीं लिखा जाता है नहीं, इसे लिखा रहता है प्रसाद हाल में कि कृष्ण और कृष्ण प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, कृपया प्रसाद का सम्मान करें, उसी तरह जैसे हम कृष्ण का सम्मान करते हैं। तो ये प्रभुपाद, तो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया उद्धार कर दिया। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम भी पहले पतित ही थे है ना, चाय पीते थे कि नहीं पीते थे, सिनेमा देखने जाते थे है ना, अंडा ऑमलेट खा लेते थे है ना, कोई नियम ही नहीं था राइट। चाय भी नहीं पीते, अंडा भी नहीं खाते, ऑमलेट भी नहीं खाते राइट, सिनेमा भी नहीं देखने जाते, सब छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया। तो हर तो इस किसके प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से। तो इसीलिए इस कलयुग में इस कौन के भक्तों की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए आप खुद पूरे समाज में देख रहे हैं कि इस काम के अलावा और कोई ऐसा चमत्कार नहीं कर पा रहा है। कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जिसको जो खाना खाओ, जिसको जो पीना पियो, बस मुझे अपना गुरु या भगवान मान लो, सब मेरे शिष्य बन जाओ है नहीं। लेकिन इस काम में ऐसा नहीं है, आपको यदि भगवान का भक्त बनना है तो आपको चारों का पालन करना पड़ेगा और हर नाम को क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। एक एक मत कृष्ण का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यह चमत्कार हरि नाम का। इसीलिए हमारे भक्त जब भी आप पहली बार किसी से मिलते हो तो क्या करते हो, उसको हरि नाम देते हो, जप करने की माला पकड़ाते हो कि ये भगवान के नाम, क्योंकि वास्तव में यही हरि नाम जो है, यही हमारी क्या है, दवाई है। प्रभुपाद गार दिया करते थे, जिसको पीलिया हो जाता है तो उसको गन्ने का जो जूस है जब पीने को दिया जाता है ठीक करने के लिए, तो कड़वा लगता है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती पिलाते हैं। हम जानते हैं कि ये जो मीठा है, जो गन्ने का रस मीठा है, इसको कड़वा इसलिए रखा कि ये रोगी है, लेकिन यही इसकी दवाई भी है। तो जबरदस्ती उसको पिलाया जाता है। अच्छा, उस जैसे से वो पीने लगता है और वही जो कड़वा लगता है गन्ने का रस, जैसे इसका रोग दूर होता जाता है, मीठा लगने लगता है। उसी प्रकार से ये हरिनाम है। हरे कृष्ण महामंत्र शुरू में अच्छा नहीं लगता है ना, जब करने में मन नहीं लगता, लगता है शुरू शुरू मन नहीं लगता, लेकिन धीरे 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 ये जब जैसे जैसे आपके जो भाव रोग हैं वो दूर होते जाते हैं, ये हरिनाम में हमारी रुचि क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। हरिनाम में रुचि बढ़ने लगती है और फिर धीरे धीरे हम भक्ति में आ जाते हैं। तो हरिनाम ही हमारा उद्धार करेगा, हरिनाम ही हमको सुधार सकता है, हरिनाम ही साथ। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हमें आनंद में हम रहें और इन सब पाप कर्मों से अपने आप को बचाएं, तो एकमात्र विष्णु का नाम है, भगवान का नाम है, जो हमारा उद्धार कर सकता है, और कोई रास्ता नहीं इस कलयुग में। इसलिए बताया गया शास्त्र में कि कलि काले नाम रूप कृष्ण अवतार, इस कलयुग में भगवान कृष्ण नाम के रूप में अवतार ले लिए। तो कृष्ण में उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए वर्ल्ड हरि नाम सिंह के कीर्तन के द्वारा ही हम लोगों का क्या कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, याद जानना चाहिए। इसलिए सड़क पर जा करके हमको कीर्तन करना चाहिए कि कीर्तन और जोर जोर से, प्रभु भक्त तापन कहते हैं कि भाई जोर जोर से हरि नाम से कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि जोर से नाम लेने से जो व्यक्ति दूर रहेगा उसके भी कान में आवाज जाएगी, हरि नाम प्रवेश करेगा, तो उसको भी क्या होगा, लाभ होगा। तो दूसरों के लाभ के लिए हमें जोर से क्या करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और अपने लिए जब बैठ करके जप करें तो इतना जोर से बोले कि हम उस हरे कृष्ण महामंत्र को श्रवण कर सकें। जबकि अच्छी विधि क्या है कि हम भगवान का नाम का जब जब करें तो इतना जोर से बोले कि हमें सुनाई दे, बस ज्यादा तेज जोर से चलाए जाए। तो इस तरह से हमें जप करना चाहिए, और जब हरिनाम संकीर्तन हो तो जितना चिल्लाना हो आप चिल्लाइए, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से जितना जोर से बोलेंगे दुनिया का कल्याण होगा। प्रभुपाद जी इस हरि नाम के बल पर इतना बड़ा चमत्कार कर दिया कि आज पूरे विश्व के लोग जो हैं भगवान का नाम ले रहे हैं। शास्त्रों में देखिए कि हरि नाम में की वजह से प्रहलाद महाराज हमेशा ध्यान रखते थे, हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन और संकीर्तन। जब पढ़ रहे थे, जब उनके जो टीचर थे, जो राजसी विद्या सिखाते थे, वो नहीं रहते थे, बच्चे जब स्कूल जब टीचर नहीं रहते थे, वो कीर्तन कराने शुरू कर देते थे, है ना, गीता का माने भगवान के बारे में प्रवचन देना शुरू करते थे, प्रवचन देते थे, कीर्तन कराते थे, है ना, खूब जोर जोर से। और यही कीर्तन, यही हरि नाम का चिंतन प्रहलाद महाराज को सुरक्षा प्रदान की। आज हमारे समाज के लोग क्या करते हैं, चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते। अरे यदि आप भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान आपकी चिंता करेंगे और सुरक्षा भी करेंगे। जिन जिन भक्तों ने विपत्ति के समय भगवान को याद किया, भगवान ने उनको छुड़ाया। जैसे गजेंद्र जो थे, जब उनको उस क्रोकोडाइल, उसको क्या मगरमच्छ क्रोकोडाइल खींच रहा था, हजार साल तक युद्ध होता था, नॉन स्टॉप फाइटिंग है ना, लेकिन जो क्रोकोडाइल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है पानी के अंदर, क्योंकि जो हाथी होता है वो जमीन का जानवर होता है और पानी का ताकतवर कौन होता है, क्रोकोडाइल होता है। इसलिए उनकी शक्ति कमजोर हो गई गजराज की, अब बेचारे डूबने लगे। जब उनका इतना सा सूर्य बच गया, तब उन्होंने, जब तक उनका बल चढ़ रहा था, पूरी ताकत लगाए थे, है ना, जब देखा कि अब मेरा बल काम नहीं आएगा, तब किसको पुकारा, जो सबसे बलवान है, तब भगवान को पुकारा, कृष्ण को पुकारा। खाली हाथ नहीं पुकारा, उसी जिस सरोवर में वो स्नान करने गए थे उस सरोवर में कमल के पुष्प खिले थे। उन्होंने क्या कि एक पुष्प पकड़ा और उठाया, भगवान को अर्पित करके फिर भगवान की प्रार्थना की। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सब भक्तों को गजन की प्रार्थना पढ़नी चाहिए, याद करना चाहिए। इतना सुंदर उन्होंने प्रार्थना की है ना। और जब गजन की प्रार्थना सुनी, भगवान जैसे थे वैसे कुल पर बैठ करके नंगे पांव आ गए है, सोचने वाली बात है। और गजेंद्र गजेंद्र को सूट पकड़ करके घड़ियाल से खींच लिया, ऊपर उठा लिया और उसके बाद अपने सुदर्शन चक्र से घड़ियाल का जो है काट दिया और गजन का उद्धार कर दिया। ये जितनी भी लीलाएं भगवान ने की हैं कि हर नाम में कितनी शक्ति प्रार्थना है, तो हमें हर नाम में की जो शक्ति है वो बहुत मान है। हमारे प्रभुपाद जी ने ये चमत्कार दिखा दिया। हमारे यहाँ पे जो भक्त हैं, आप लोग भी भक्त बना रहे हैं, आप देखिए कि हरे कृष्ण मंत्र कितना असर करता है कि लोग चांटिंग करते हैं, जब करने से ही उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, अगर 16 माला जिस दिन जब नहीं होती बड़ा तकलीफ होता है। अगर मंगल आरती मिस हो गई तो पूरा दिन भर एक अजीब सा लगता है ना, न आने का एक कचोड़ता है। भले ही एक कई बार आलस करके नहीं आए लेकिन बाद में पछताते होते जाना जाना चाहिए था। ऐसा आत्मग्लानी होती है, क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शन से, भगवान के कीर्तन से, भक्तों के साथ बैठ कर जप करने से जो आनंद होता है वो चारपाई पे सोने से नहीं होता, जान लीजिए। इसलिए सुबह सुबह हमें क्या करना चाहिए, उठना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए। प्रभुपाद जी यही सिस्टम बनाया। जानते जो आलसी व्यक्ति होता है अगले जीवन भगवान उसमें जानते क्या बनाते हैं, अजगर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अजगर। तो अजगर मत बनिए, या भालू बना देते हैं। जो ज्यादा सोता है भालू सोते ही रहता है, ऐसा बताया क्या? अगर आप एक एक, एक पुराण होता है, कौन सा पुराण होते हैं जो आदमी मर जाता है तो उसको सुनाया जाता है, गर्भ पुराण अगर आप पढ़िए तो यही बताया गया है कि क्या करने से क्या बनता है आदमी। जो ईर्ष्या करता है एक दूसरे के प्रति, ईर्ष्यालु होता है, उसको सांप बनाया जाता है। उसको सांप बना कि सांप जो क्या होता है, ईर्ष्यालु होता है। तो हमें सतर्क रहना चाहिए, जो ज्यादा सोता है ना उसको क्या बना दिया जाता है, भालू बना। और जितने जो मांस खाता है उसको मांसाहारी जीव बना दिया जाता है ना। गिद्ध बना दिया जाएगा, गीदड़ बना दिया जाएगा है ना। माने जो मांसाहारी जीव होते हैं वो बना दे ताकि आप आराम से जिंदगी भर मांस ही खाए, ऐसा होता है। इस तरह से जो है गुरु पुराण लोग जल्दी सुनता नहीं, सुना नहीं चाहता कि उसमें बताया गया है कि एक करोगे तो ये बनोगे, एक करोगे तो वो बनोगे। पढ़ना जिससे लोग डरता है उसको पढ़ने से, क्योंकि वही काम करता है इसलिए डरता है। गलत काम करता है इसे डरता है, ये नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए ताकि तुम्हारा गलत काम जो है छूट जाए, तुम करोगे नहीं। इसीलिए हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। हमको आलसी बनेंगे तो अजगर बनेंगे, इसलिए हमको अजगर नहीं बनना है अगले जीवन में, न हमको भालू बनना है। हमें क्या करना है कि 3:30 बजे उठ करके भगवान के दर्शन करने के लिए आना है, कीर्तन करना है, भक्तों के साथ बैठ करके हरि नाम का जप करना है, भक्तों के साथ बैठ करके प्रसाद पाना है। एक कार्य करेंगे तब हमारा वर्तमान जीवन क्या हो जाएगा, आनंद बीतेगा। भक्ति करने से, हरिनाम लेने से वर्तमान क्या हो जाता है, आनंदित हो जाता है। अब भविष्य हमारा क्या हो जाता है, बन जाता है। क्योंकि किसके द्वार खोलेंगे, भगवान धाम जाने का द्वार प्रशस्त करेंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने एक सिस्टम बनाया। अभी हम 2-3 दिन पहले एक बड़े व्यक्ति के पास गए है, उसने बोला कि आप लोग लाइव ह्यूमर क्यों बनाते हैं। उस व्यक्ति से हमारी मुलाकात जानते क्या हुई थी, प्रेजेंट हाउस में, राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम चल रहा था तो मैं भी उस कार्यक्रम में इन्वाइटेड था, तो मेरे साथ वो बैठा हुआ था, अपनी वाइफ के साथ आया हुआ था। तो अपना कार्ड मुझे दिया, मैंने अपना कार्ड दिया। उसके बाद हम बुलाए धन्य, तो मंदिर आया पूरे परिवार के साथ, मैंने दर्शन किया। और जब मैंने मेंबर्स कई जुड़ने की बात बताई, तो उन्होंने कहा वैसे जैसे जुड़ सकते हैं, या तो फुल टाइम भक्त बन करके जुड़ सकते हैं, या तो मेंबर बन के जुड़ सकते हैं, या तो आप ऐसे आते रहे जब करते रहे जुड़ सकते हैं, बहुत तरीके हैं इस काम जुड़ने का। तो वो मेंबर तो तुरंत बन गया, खुद बन गया, छोटे भाई को बना दिया। लेकिन जब उसके घर गए तब उसने डिटेल में हमको पूछा कि का मेंबर क्यों प्रभुपाद जी ने सा शुरू किया। हम कहा देखिए प्रभुपाद जी, आप सब जैसे लोगों को भगवत धाम ले जाने के लिए सोच रहे थे। हमका प्रभुपाद जी की सोचे थी कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो वहां पे देखा कि वहां के लोग जो हैं कैश लेके नहीं चलते, वो डाइनर्स क्लब, एक क्लब, वो क्लब के कार्ड लेके चलते हैं। कार्ड जानते हैं ना, कार्ड, पैसा निकालना हो कार्ड कर, वहां हर चीज कार्ड का फैशन था। और लोग क्लबों का मेंबर बनने का शौक था, जैसे यहाँ पे पंजाबी बाग क्लब है, अब पंजाबी बाग क्लब का मेंबर होने के लिए 10-15 लाख देना पड़ता है ना, और बन भी नहीं सकते क्योंकि सीटें फुल हो गई हैं। अब 50 लाख दें तब भी नहीं बन पाए, ऐसी स्थिति है। तो हमका प्रभुपाद जी ने सोचा कि आप जो है पैसे दे करके अब रोटरी क्लब, लायंस क्लब, एक क्लब, वो क्लब, पंजाबी बाग क्लब, पीतमपुरा क्लब, एक क्लब का मेंबर बनते हो, है ना, पैसा दे करके आप मेंबर बनते हो, और उसके अंदर क्या करते हो, जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, है ना, ये सब के लिए क्लब होता है, स्विमिंग करने का, दुनिया जितने भर सामान छुका कर इसलिए क्लब में जाते हो। तो ऐसे पैसा दे करके आप नर का द्वार खोलते हो, ये सब कुकर्म करके आप नर का द्वार, मैंने ऐसे बोला। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर तुम्हें क्लब का ही बनने का शौक है तो इस्कॉन क्लब का मेंबर बनो, है ना, इस्कॉन क्लब का मेंबर बनो। उससे कहोगे आप धन भी दोगे, धन प्रभु की सेवा में लगेगा, स्वर का द्वार खुल जाएगा, ठाकुर जी का द्वार खुलेगा। धन आप वहां भी दे रहे हो, यहां भी दे रहे हो, लेकिन द्वार कहां का खुल रहा है, यहां दे रहे हो तो वैकुंठ धाम का द्वार खुल रहा है, वहां दे तो नरक का द्वार खुल रहा है, है ना। इसलिए वादित धन की बात तो सही है कि जब धन दे ही रहे हो ऐसी जगह दो जहां पे आपको द्वार अच्छा से खुले। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते कि अगर आप मंदिर का निर्माण कार्य के लिए, जैसे रोहिणी मंदिर बन रहा है, द्वारका मंदिर बनने वाला है, मंदिर निर्माण में कार्य होते हैं, जब भगवान के लिए यहाँ पे एक घर मंदिर बनाने का सहयोग करते हैं, तो भगवान का आपका घर कहाँ बनाते हैं, ऊपर आपको जगह आपकी पक्की हो जाती है भगवत धाम में। तो ये सब व्यवस्था है। भगवान उद्धव जी कहते हैं कि जो हमारे लिए पुष्प वाटिका, सरोवर, तालाब, कुएं और मंदिर का निर्माण करवाता है, हे उद्धव, वो मेरे धाम को वापस आता है, वो मेरे पास आता है। इसीलिए जब मंदिर का निर्माण कार्य किया जाए, है ना, तो हमें उसमें क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ये भगवान की इच्छा है। तो भगवान ने इतना सुंदर सरल तरीका दे दिया है, इन सरल तरीका को हमें क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। इसलिए हमें हर नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि हरिनाम ही हमारा जीवन है और हरिनाम हमारा क्या है, प्राण है। हमारा जीवन और प्राण क्या है, हरिनाम है, लाइफ एंड सोल, हरिनाम तो लाइफ एंड सोल, क्योंकि हरिनाम से ही हमें सब कुछ सुरक्षित। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी एक चीज और ध्यान आ गया, अभी एक जगह है फ्रेंच कॉलोनी का नाम सुना होगा, बहुत रिच कॉलोनी, फ्रेंच कॉलोनी, तो वहां पे एक फ्रेंच क्लब है। तो फ्रेंच क्लब के एक समारोह में मुझे बुलाया गया था, तो उसमें एक ऐसा क्लब, जितने अरबपति है ना उन्होंने मिलकर के क्लब बनाया है, फ्रेंच क्लब था ना। फ्रेंच कॉलोनी, फ्रेंच क्लब में सब करोड़पति अरबपति सब लोग आए थे। तो दो मिनट के लिए उन्होंने मुझे समय दिया लास्ट में बैठने के लिए, कि मुझे चीफ गेस्ट बनाया था, उसका सारे बड़े बड़े लोग। तो हमने उनसे भी यही बात कही कि देखिए जीवन जीने के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थोड़े पूछा वो तीन जीवन तीन चीजें क्या हैं, तो लोगों ने क्या बोला, रोटी कपड़ा और मकान। और कभी यार रोटी कपड़ा मकान तो बाद की बात है, जीवन जीने के लिए सबसे कीमती वस्तु है हवा, एयर। क्योंकि बिना सांस के आप 30 सेकंड नहीं जी सकते। अगर हम आपका नाक मुंह बंद कर दें तो 30 सेकंड में आप शरीर छोड़ दें। तो जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हवा है, एयर, वायु है। कि वायु के बिना आप जीवित नहीं रह सकते। और जो वायु है वो किसके पिता हैं, हनुमान जी के पिता हैं। देवताओं से पूछे, जब हनुमान जी को उन्होंने मार दिया था इंद्र ने, है ना, गदा से अपने वज्रपात से, तो वायु ने क्या किया था, पूरे खींच लिया वायु, देवता तक भी सांस लेने में तरसने लगे, हड़कंप मच गया सारे लोग, कि बिना वायु के कोई जी नहीं सकता। अब सोचे तो जीवन जीने के लिए सच महत्वपूर्ण के वायु है। तो मैंने उन सेठ सेठानी को बोला कि वायु कौन देता है, भगवान देते हैं, कृष्ण देते हैं। कोई आज तक कोई वैज्ञानिक ने नहीं दावा किया कि हवा मैं बना रहा हूं और मैं सप्लाई कर रहा हूं। कोई पता है, ये पंखा नहीं बना रहा है हवा, पंखा इस तरह से डिजाइन किया जाता है जब ये घूमता है तो जो कमरे में हवा मौजूद है उसको हमारे पर फेंकता है, बस इतने काम है कि नहीं। हवा नहीं बनाता यार, चार किसी हवा फेंकता है हमारे पर। तो जीने जीवन जीने के लिए क्या है, वायु। तो ये वायु कौन देने वाले हैं, कृष्ण। इसलिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि साथ ही कौन दे रहा है, भगवान दे रहा है। उसके बाद जीवन जीने के लिए सब जरूरी क्या चीज है, पानी, जल। जल के बिना आप जीवित नहीं रह सकते। जो निर्जला रखते हैं उनसे पूछिए, या आप लोग निर्जला जब आती है निर्जला एकादशी, निर्जला रख करके टेस्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि सुबह होते होते आपकी क्या हालत होती है। आप बिना जल के 3 दिन से ज्यादा जी नहीं सकते। जल 80% हमारे शरीर में क्या होता है, जल होता है। तो जल के बिना आप जी नहीं सकते। और जल कौन देता है, कृष्ण देता है, भगवान देता है, आप जानते। और उसके बाद नंबर आता है अन्न, जो आप चावल दाल रोटी सब्जी भी 9 बजे लेंगे वो आता है उसका नंबर, तीसरा नंबर। उसके बिना भी आप ज्यादा दिन तक जी नहीं सकते, राइट, ज्यादा दिन तक जी नहीं सकते। ये भी कौन देता है, कृष्ण देते हैं। क्योंकि अन्न की उत्पत्ति होती है जल से, जल आती है वर्षा से, और वर्षा होती है जब आप क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हरे नाम जरूरी है, कि हरे नाम से ही वर्षा होती है, और वर्षा से जल मिलता है, और जल से अनाज उत्पन्न होता है। तो खाने पीने की व्यवस्था किससे होती है, हरे नाम से। यह है हरे नाम का महत्व। हरे कृष्ण। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, ग्रंथ राशि भागवतम की, तय गौर प्रणाम।